आज चर्चा करेंगे स्मृति स्वरूप स्थिति, जो हम सभी की बहुत श्रेष्ठ स्थिति है, महान स्थिति है, और जिसके बाद पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, सहज हो जाता है। जो भी स्मृति हमें आती है उसका हम स्वरूप बन जाते हैं। तो आप सभी चिंतन करेंगे, बहुत अच्छा। बाबा ने क्या क्या याद दिलाया, स्मृति माना याद दिलाया है बाबा ने कुछ हमें, और ये चेक करना है कि हमें याद आया या याद दिलाने वाला दिला दिला कर थक गया और हमें याद ही नहीं आया। हजार बार याद दिलाया फिर भी याद नहीं आया, क्या मनोस्थिति है वो चेक भी करना है। कुछ याद आने से मनुष्य सहज ही उसका स्वरूप बन जाता है, सबको अनुभव है, बहुत अच्छे अनुभव हैं। 10 साल पहले की कोई बहुत खुशी की बात याद आ जाए, जब आपको बड़ा आनंद मिला हो तो क्या होगा, तुरंत वैसा ही स्वरूप बन जाएगा। और 20 साल पहले कोई बहुत दुख भरी घटना घटी हो जिस पर आप बहुत रोए हो, आज बैठे बैठे याद आ गई तो क्या होगा, फिर रोने लगेंगे। स्मृति से स्वरूप बन जाता है, ठीक है, वो आगे चलेंगे। पहले स्मृति से स्वरूप बन जाता है। अब सभी पॉइंट निकालेंगे, बाबा ने क्या क्या याद दिलाया हमें, पूरे 5000 साल की याद दिलाई, उससे भी पहले की याद दिला दी। कहाँ थे उससे पहले हम, परम धाम, जिसका किसी को पता नहीं था, सब भूल गए थे। कहाँ थे हम, क्या स्वरूप था वहाँ हमारा, सब भूला हुआ था। बाबा ने उस मुक्ति धाम की और हमारी मुक्त अवस्था की क्लियर याद दिला दी। जब तुम मुक्ति में थे तो ऐसे थे, क्या हुआ उसे जानकर, अब याद आया या नहीं। एक है ज्ञान मिला, दूसरा है याद आना। चिंतन करना है दोनों बात पर। बाबा ने याद दिलाया, ज्ञान दिया। तुम सभी आदि में कौन थे, कौन थे, हाँ नहीं, माता कुछ और बोल रही, क्या थे बोलो, ज्योतिबिंदु निराकार थे, नहीं वो आदि में नहीं थे, आदि में क्या थे, देवी देवता थे। अब सोचना है, याद आया या ज्ञान मिला, सब गहराई से विचार करेंगे आज। याद आया, जब तुम देवता थे तो कैसे थे, सर्वगुण संपन्न और याद आया, आज की चर्चा है याद आया। जैसे नीचे की एक कहानी सुना दूं, परसों रात को एक माइंड की ट्रेनिंग देने वाली बहन आई हुई है, नीचे आई थी, उसने अपना प्रोग्राम दिखाया, जादू जैसा था, जैसे जादूगर दिखाता है ना, कि भाई तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बोर्ड पे पहले लिख दिया, देखा तो वही चल रहा था, ऐसे ऐसे। तो उसने हंसी खुशी के लिए एक माता को आगे बैठा दिया था कुछ लिख के देकर, उसका नाम था रूपा। तो वो बीच बीच में बोलती थी रूपा, तो बैठती थी ओम शांति मैं यहाँ हूँ, आगे आगे बैठी और ये बोलती थी मैं यहाँ हूँ। सब बड़े खुश होते थे उसकी ये बात सुन के, तो बीच बीच में मनोरंजन किया हुआ था। तो आज का मनोरंजन है याद आया, इसको मनोरंजन भी करना और चेक भी कर लेना। अब बोलो आगे क्या क्या याद दिलाया। बहुत गहरा सब्जेक्ट है ये। हम संपूर्ण पवित्र थे, कैसे हमारे चेहरे थे, धन संपदा कितनी थी हमारे पास, आयु कितनी थी, स्वास्थ्य कैसा था, संबंध कैसे थे, सुख शांति प्रेम कैसा था, सब याद दिलाया। गिरने में 5000 साल लगे, नीचे उतर आए, सब कुछ बिगड़ गया, तो बाबा ने पूरे 5000 साल की भी याद दिलाई। कैसे कैसे तुम उतरे हो, क्या क्या करते आए हो भक्ति में। आज मुझे बड़ी हंसी आई, बाबा ने एक बात का उत्तर दिया था मुरली में, लोगों ने मेरा सोमनाथ का मंदिर लूटा, तो आगे क्या बोला है? मैं उसमें थोड़ा ही कुछ करूंगा, लोगों ने तब ये कहा था भगवान का मंदिर है, उसे लूटने लगे तो भगवान क्या कर रहा था, जो अपने मंदिर को नहीं बचा सका वो हमें क्या बचाएगा, ये लोग ऐसा सोचते हैं। लिखा ये हम लोगों ने जब ये बहुत पहले पढ़ा था तब भी ये सुना कि लोगों ने कहा, पंडितों ने कहा ये शिव का मंदिर है, शिव इसे बचाएगा। सब लोग अलग हट गए लेकिन बचाया नहीं, तो उसका उत्तर दिया बाबा ने, ऐसे थोड़ा ही मैं उनसे बदला लूंगा कि मेरा मंदिर लूटा, आ जाओ अब ठीक करता हूँ तुम्हें। यद्यपि ठीक कर तो दिया था, आप सबको तो वो इतिहास पता नहीं है, महमूद गजनवी जब मंदिर लूट के गुजरात की तरफ से आया तो 3 मास ठहरा पाटन में, जो गुजरात की राजधानी थी। राजा भोज उज्जैन का राजा था, वो अजमेर में आ गया क्योंकि अजमेर से होके उसे जाना था, वो अपनी सेना सहित अजमेर में आ गया और जो राजा था वहां का उससे बातचीत की कि जितना माल इसने लूटा है इसको वापस नहीं ले जाने देना अफगानिस्तान। उसने प्लान बनाया और ऐसे दूत छोड़े रास्ते में कि उन्होंने उसको रास्ता दिखाया और डरा दिया कि अजमेर में तो राजा भोज सेना सहित आ गया है, तुम जिंदे नहीं जा पाओगे, इधर से चले जाओ, सीधा रास्ता है। फिर आगे एक मंदिर बनवा दिया, उसमें पुजारी बैठा दिया, उससे पूछा, पानी पिलाया, कहाँ को जाना है, इधर से चले जाओ, और उनको प्रवेश करा दिया भयानक रेगिस्तान में। और वो रेगिस्तान ऐसा जिसमें जब आंधी आती थी सब दब के मर जाते थे, पानी तो कहीं मिलता ही नहीं था। कहा बस इधर, यही काबुल है, इधर गजनी काबुल के पास है, इधर गजनी है, सीधे जाओगे जल्दी पहुंच जाओगे। और ऐसा तेज तूफान चला कि सब दब गए, ऊंट भी दब गए, जिन पे हीरे मोती लदे थे वो भी दब गए। 10-20 सैनिकों के साथ महमूद गजनवी किसी तरह लाहौर पहुंचा जान बचा के, उसको कुछ भी नहीं ले जाने दिया था, ये प्लान कर लिया था इन्होंने। एक बात और याद आ गई, अभी हम एक जगह गए, शनि का मंदिर है, तो हमें कहा उसको जरूर देखने चलना है, रास्ते में ही था। कहा हम भाई शनि का मंदिर क्या करेंगे, कहा मूर्ति नहीं है वहाँ, एक पत्थर है बस, 4 फुट लंबा पत्थर है, उसमें लोग तेल चढ़ाते हैं। लेकिन क्यों कहा देखने चलना है, उस गांव में कोई भी ताला नहीं लगा था और अगर कोई चोरी करके निकले तो वो अंधा हो जाता है, तो कोई चोरी करता ही नहीं कि आंखें ठीक हैं अपनी। देखो कलयुग के अंत तक भी इतना प्रभाव भक्ति का, भविष्यनी का, जबकि मूर्ति भी नहीं है, केवल एक पत्थर है। तो माहौल तो बड़ा अच्छा था, मंदिर में लंबा चौड़ा एरिया बनाया हुआ है। तो बाबा कुछ करेगा नहीं, उसका कोई मंदिर लूटे, लेकिन कर्म की गति आपे ही कर देती है। महमूद गजनबी उसके बाद भारत की ओर नहीं आया, क्योंकि उसका उन लोगों का क्या लक्ष्य होता था, ये सब थे गरीब देश और भारत था बहुत साहूकार, बहुत साहूकार। ये कलयुग के शुरू की कहानी है, 1025 की ये कहानी है जब उसने लूटा था। और 17 बार नहीं लूटा था, एक ही बार लूटा था। 17 बार उसने भारत पे आक्रमण किया था, भारत के अलग अलग शहरों को लूटता था और चला जाता था। वहाँ छोटे छोटे राजा होते थे जिनकी सेना 2-4 हजार होती थी, वो जल्दी उनको हरा के सब लूट के ले जाता था। 17 बार उसने भारत पे आक्रमण किया। अब सोचो 17 बार अगर वो सोमनाथ पे आक्रमण करे, हर साल करे, तो एक साल में थोड़ा हीरो का मंदिर फिर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, एक ही बार किया। अब तक सोमनाथ मंदिर 5 बार टूटा है, उसका इतिहास है, वहां बताते हैं। तो फिर से आ जाओ वहीं, क्या याद दिलाया, पूरे चक्र की याद दिलाई। और अब अंत आ गया तो क्या याद दिलाया, नहीं और कुछ याद दिलाया, और सोचना है उससे क्या हुआ हम सबको। बाबा ने याद दिलाया, तुम्हारा ये खेल पूरा होता है अब तुम्हें, ये सबसे गुह्य बात है। ये याद नहीं आती आत्माओं को, क्यों नहीं याद आती, 2 बातें मैंने कही, एक है ज्ञान होना, दूसरा है याद आना। ज्ञान तो हो गया, सबको समझाएंगे, 5000 साल का खेल है, पूरा हो रहा, विनाश होगा, सब आत्माएं घर जाएंगी। पर अगर हमें याद आ जाए तो क्या होने लगेगा, बोलो, ठीक बोल रहे हैं? हम माताओं से पूछना चाहते हैं, क्या होने लगेगा, याद आ जाए कि विनाश होने वाला है, हम आत्माओं को घर जाना है, तो क्या होगा, बोलो, माताओं को बोलना है, आगे नहीं छोड़ेंगे हम ऐसे, बोलो। हाँ, एक बात और, क्या क्या, नहीं घर जाना है, अब खेल पूरा हुआ, घर जाना है, और बताओ, आई नहीं अभी बात, कर्मिक अकाउंट क्लियर करके जाना है, ऐसे नहीं जा सकेंगे, और बोलो, नहीं और बोलो। हाँ, आगे वालों को ही नहीं बोलना, सबसे पीछे की माता खड़ी होके बोले, पीछे इसलिए बैठी थी ना कि बताएंगे नहीं कुछ, खड़े हो जाओ और बोलो। सफेद बालों वाली 2 बैठी हैं, बोलो, अरे बोलो ना, दूसरों को देख रही हैं। घर जाना है, खेल पूरा हुआ तो यहाँ से वैराग होने लगेगा, नष्टो मोह होने लगेंगे, अगर नहीं हो रहे हैं तो जाने का इरादा नहीं है। और बाबा क्या कहते हैं, मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा। बहुत खराब खराब शब्द बोलता है भगवान, तुम्हारे शरीरों को जलाकर, बोला या नहीं, तुम्हें पावन बनाकर, मार पीट के घर ले जाऊंगा, देखता हूँ कैसे नहीं चलोगे तुम, सजा दिलाएगा ना पूरी, इसलिए प्यार से ही चलो कि हाँ बाबा, बस ये खेल पूरा हुआ, आप आए हो हमें ले जाने, चलो हम तैयार, लेकिन सामान उठाना पड़ेगा, सब कुछ, कौन सा, सब कुछ समेटना पड़ेगा। और मैंने कहा सब खजाने अपने को भरने पड़ेंगे, खाली न आए थे न खाली जाएंगे, ये तो दुनिया वाले कहते हैं खाली आए थे खाली हाथ जाएंगे, उसी के अंदर को भी दिखा दिया खाली हाथ कुछ नहीं ले जा रहा है, लेकिन ले तो जाते हैं ना सब, स्थूल चीज नहीं, सूक्ष्म संस्कार कर्म अपने अपने सब साथ लेके जाते हैं। हमें जाना है संपूर्ण बनकर, हमें जाना है बाबा के साथ। जो गीत बजाया था बहुत अच्छा, याद करो क्या अच्छा लगता है, बाबा तुम्हारा साथ हमें बहुत अच्छा लगता है। लगता है कब होता है उसका साथ, अमृत वेले सारा दिन छुट्टी, कब होता है साथ, पीछे वाले भाई बताओ, अरे थोड़े आगे आ जाओ कुमार, आगे आ जाओ, छोटे पीछे बैठ गए, लास्ट सो फास्ट चलो, पीछे आने वाले आगे, उठो उठो जल्दी उठो, दे इतनी देर नहीं करनी होती कुमारों को, अधर कुमार देर करते हैं, इसलिए मैं माताओं को नहीं उठा रहा, नहीं तो 5 मिनट लगेंगे आने में। ठीक है, तो हम सभी को बाबा का साथ बहुत अच्छा लगता है। किसको रहेगा उसका साथ, जो याद रखेंगे बाबा हमारा साथी है, केवल याद रखना, कुछ नहीं करना है, बुद्धि की खींचतान नहीं, बाबा हमारा साथी है, ये नशा हो जाए। हाँ, गीत गाया करो, रोज सारा दिन गाते रहा करो, भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि संसार में भय बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है। एक बहन आई अभी मैं नीचे से आया हूँ, डरी हुई बहुत, कहा मुरली चल रही थी अव्यक्त अभी संडे को, उसमें 3 बातें थी, मैं तुमको निराकार बनाता हूँ, 3 बातें कुछ थी, कहा मैं फट से निराकार हो गई और बाबा के पास पहुंच गई, वहां कोई बहन बैठी थी, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, नीचे आई अगले दिन किसी ने शरीर छोड़ दिया, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया, डर गई मैं बहुत, ये क्या था, बाबा ने अनुभव कराया या कुछ और था। मैंने कहा बाबा ने तुम्हें सुंदर अनुभव कराया ना ऐसे दीदी होने का, कहा मुझे तो लगा बाबा मुझे लेने आया है, तो मैंने कहा इसमें डरने क्या बात, मरने के लिए तो भगवान के पास आए थे। कहती खुशी से बाबा चलो, जब आपकी आज्ञा हो चलो, नहीं मैं अभी नहीं जाना चाहती, इतनी हंसी आई उसकी बात सुन के। तो मौत से इतना डर है ना मनुष्य को, और अच्छी वो बहन है, लंबे समय से ज्ञान में मुरली सुना रही थी, सुनाते सुनाते ये हो गया एकदम, शरीर ही हो गई, ऊपर पहुंच गई और घबरा गई। बाबा के पास जाने से फिर मैंने पूछा तुम्हें खुशी हुई थी, अच्छा लगा था, कि बिल्कुल अच्छा लगा मुझे, एकदम मन खुशी से भर गया था। मैंने पूछा डर तो नहीं लगा था तब, कि नहीं बिल्कुल नहीं लगा, फिर मैंने कहा बाद में क्यों लगा, कि मैं अभी मरना नहीं चाहती। तो मैंने ये प्रश्न उससे इसलिए पूछे क्योंकि कुछ भटकती आत्माएं भी ऐसा अनुभव कराती हैं, उसमें लगेगा डर उसी समय और कुछ बुरी फीलिंग होगी, लेकिन अगर फीलिंग बहुत सुंदर है, बहुत खुशी हो रही है, आनंद है, तो वो बाबा अनुभव कराता है अच्छे। तो डरना नहीं है, जाना है, जाना है माताओं को, पीछे वाली माताओं को भी, बच्चों को छोड़ के, या कहेंगे बाबा सबको एक साथ ले चलो, हैं? एक साथ तो वो नहीं ले जाएगा, सबका अपना अपना टाइम होगा। तो बाबा का साथ जिन्होंने अब किया होगा वो बाबा के साथ चलेंगे, और जिन्होंने बाबा को साथी जिंदा नहीं बनाया, जिंदे रहते, मरने के बाद भला बाबा साथ क्यों देगा, कहेगा जब तुम्हें बुद्धि थी, जब तुम्हें ज्ञान था, समझ थी, तब तो मुझे साथी बनाया नहीं, अब मृत्यु हो गई, अब तुम अकेले मैं अलग। साथी वही बना सकते हैं बाबा को जो साक्षी दृष्टा हो। साक्षी रहने वाले ही साथी के साथ का अनुभव करते हैं। तो कल लक्ष्य रख लेना, 10 बार याद करना है, भगवान मेरा साथी है। ये बात नशे में आ जाए। देखो कैसे नशे में आए। मान लो आपका कोई संबंधी बड़ा मिनिस्टर बन गया, अब वो आपके पीछे है ना, भाई कुछ भी हो जाए मैं हूँ, मुझे बताना। तो आप कहेंगे ना, भाई फलाना आदमी हमारे साथ है, हमें किसी का डर नहीं, कुछ भी होगा वो बैठा है उधर। तो वो बैठा है वहाँ, लेकिन हम क्या कहेंगे, हमारे साथ है, कहेंगे या नहीं। ऐसे ही बाबा का भी नशा हो जाए, बाबा हमारे साथ है। जब तक ये संगम युग है हम अकेले नहीं हैं। ये नशा योग हो गया, आपको योग लगाने की जरूरत नहीं, इसमें ये योग हो गया, और स्मृति स्वरूप होना भी योग हो गया। तो अभी सब कुछ छोड़कर हमें चलना है, ऐसे चक्कर लगाना। अभी आधा घंटा योग भी चलेगा 9:30 से 10, और सवेरे उठ के भी चक्र लगाना, और अब भी मैं आत्मा परम धाम से चली, शरीर जैसे मन के थे, मनको से निकलती हुई, जैसे धागा निकलता है ना, मनको से निकलती हुई अब यहाँ पहुंच गई, अब इससे निकलकर फिर वापस जाना है, फिर घूमना है। आत्मा को चक्र लगाते देखना, न्यारापन अनुभव होने लगेगा, डिटैचमेंट होता रहेगा, क्योंकि मोह ममता ऐसी चीज है जो छोड़ने से नहीं छूटती है। उसके लिए हर मनुष्य को कुछ साधना करनी पड़ती है। तो याद करेंगे बाबा ने हमें क्या क्या याद दिलाया, कम से कम 25 बातें लिख सकते हैं जो चिंतन करते हैं। अच्छा भाई और बहने, वो 25 पॉइंट लिखेंगे बैठकर अपने पास शांत में, कल बाबा ने मुझे ये याद दिलाया, जाने की याद दिलाई, ये याद दिलाया जब तुम सतयुग में थे कैसे थे, जब तुम परम धाम में थे कैसे थे। मुख्य बात ये है तुम कैसे थे, हमें याद आ जाए, माना वो स्वरूप दिखने लगे। देखो जो हमने उदाहरण दिए 20 साल पहले की कोई घटना याद आ जाए तो उसको हम देखने लगते हैं ना तुरंत, जैसे वो अभी हो रही है हमारे साथ। हमें ये नहीं लगता 20 साल बीत गए, अभी हो रही है, जैसे उसी घटना से हम गुजर रहे हैं। तो समय का जो अंतर है वो समाप्त हो जाता है। सतयुग में हम ये थे सामने आ जाए तो सतयुग और अब ऐसे ही लगेगा, जिसको बाबा कहते हैं ना, कल तुम देवता थे, कल लगेगा बस अभी तो थे, चक्र लगाकर यहाँ आ गए हैं। हमारे पांचों स्वरूपों की याद दिलाई, याद दिलाया। अब कुछ अच्छी बातें याद कर लें और स्वयं को उसका स्वरूप बनाएंगे, और स्वरूप बनाने की विधि है चिंतन। पांचों स्वरूपों की याद दिलाई, पूज्य भी तुम थे। और मैं अब आपको एक विशेष बात याद दिलाऊं जो गीत था, जब भी हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा बाबा दौड़ा चलाएगा। याद समझ लें आप, हमें दादी जानकी बहुत बोलती थी योग और याद में क्या अंतर है बताओ, योग याद। दादी जानकी ऐसी बहुत पूछती है ना, योग माना बुद्धि को स्थिर कर दें ऊपर उस पर, और याद माना हम जैसे याद करते हैं एक दूसरे को, हम याद कर रहे कैसे बाबा आते थे, कितना उससे उसने हमें सुख दिया है। तो बाबा ने कहा जैसे ही तुम मुझे याद करोगे मैं तुरंत आ जाऊंगा। बहुत बड़ा अधिकार दे दिया है बाबा ने हमें, स्वीकार करें इस अधिकार को और इसका बहुत फायदा उठाएं। भगवान ने अपने पर अधिकार दिया है, बहुत बड़ी बात है। हम सीख लें, हम अपने सद्विवेक का प्रयोग करें, बाबा को कैसे यूज करें। एक बहुत अच्छी घटना मैं आपको सुनाता हूँ, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बात बहुत साल पहले की है, लगभग 15 साल पहले। विदेशियों का सीजन था, मार्च में आया करते थे विदेशी आखिर में बहुत ज्यादा। बाबा मिल लिए थे और बस उनके वापिस जाने का समय था, तो भोग लगा ज्ञान सरोवर में। ये बातें क्योंकि छपती नहीं है तो किसी को पता नहीं है, मोहिनी बहनैन अमेरिका की, उसने भोग लगाया और एक छोटा सा संदेश बाबा ने सबके लिए दिया। सुने आप, बाबा ने कहा पूरे साल ऐसा अभ्यास करना। क्या सीन दिखाया कि सर्वशक्तिवान तुम्हारे सिर के ऊपर छत्र छाया है। एक अभ्यास का पूरे साल अभ्यास करना, और दूसरी बात कही बहुत अच्छी बात है, बाप तुम्हारा है, बाप को यूज करना। उन दिनों ये बात चलती आती थी मुरलियों में, यूज करो बाबा को, मैं तुम्हारा हूँ यूज करो। हम अकेले ही लगे रहते हैं ना, घर की समस्याएं निपटाने में, माया के युद्ध में, बाबा को यूज करो। तो बाबा ने कहा पूरा साल ये दो काम करना। तो मैं उन दिनों बाबा को यूज करने का बहुत अच्छा करता था, क्योंकि उन दिनों ये महावाक्य आ गए थे, प्यार से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा आ जाओ। जोर से कह रहा ना बाबा ने, सुनते हैं ना सब, आ जाओ। जरा जोर से कहा, ये नहीं कहा आ जाओ बाबा, नहीं, कहना आ जाओ। इसमें क्या छुपा हुआ है, अधिकार। तो बाबा बंधा हुआ है किसके लिए, मदद करने के लिए। कितनी सुंदर बात है, सोच के देखो जरा, भगवान खुद बोल रहा है बुलाओ तो सही मुझे, मैं बंधा हुआ हूँ तुम्हारे पास आऊंगा। जैसे माँ का एक छोटा बच्चा बीमार हो, पास के कमरे में हो, माँ गहरी नींद सोई हो, रात को बच्चा रोने लगे दुख से, माँ की नींद खुले, माँ क्या कहेगी, भागी जाएगी या कहेगी रोने दो, बोलो माताएं, अब तो पीछे वाली माताएं बोल दो, भागी जाओगी या कहेगी रोने दो भले कोई मुझे नींद आ रही है, बोलो माताएं। माताओं को पता ही नहीं, पता है माताएं तो करती हैं काम, सारी रात बैठ जाएगी उसके साथ, नींद भी खत्म हो जाएगी, होगी या नहीं, हाँ, उसे सुलाएगी, उसे प्यार करेगी, दवाई होगी दवाई देगी, न होगी बाजार जाएगी, कहीं तो दुकान खुली मिलेगी, करेगी या नहीं। बाबा का इससे कहीं ज्यादा प्यार है हम सबसे, हम बुलाएं और वो कहे पाप तो तुमने किए थे भोगो मैं नहीं आऊंगा, मेरे से पूछ के किए थे क्या, होगा ऐसा नहीं होगा। वो बंधा हुआ है, माता पिता है हमारा और प्यार का सागर, ऐसा हो ही नहीं सकता वो मदद न करे न आए। तो बाबा ने ये होमवर्क दिया, मुझे तो मजा आ गया पूरा साल। अगले साल फिर वही दिन आए, वही मार्च, मोहिनी बहन भी वही थी, वो लास्ट में आती थी, भोग लगाया, बस विदाई ले रहे थे सब, दो चार दिन में जाने वाले थे, फिर बाबा ने संदेश भेजा। अभी संदेश को सुन के आप रियलाइज करना कुछ, बाबा ने कहा पिछले साल बच्चों को काम दिया था कि बाप तुम्हारा है, बाप को यूज करना, लेकिन बाप तो वतन में इंतजार ही करता रहा, मेरे बच्चे कब मेरे पास आए, नीचे ही रोते रहे मेरे पास नहीं आए। सोचो, नीचे परेशान रहे मेरे पास नहीं आए। सोचो क्या फीलिंग्स हैं बाबा के मन में हमारे लिए, उसका दिल कैसा है हमारे लिए, इस बात को रियलाइज करें। आप एक चीज सब अनुभव करते होंगे, बाबा रोज चाहता है कि मेरे सभी बच्चे सवेरे उठकर मेरे से सब कुछ ले लें। उठाता है या नहीं, बोलो उठाता है या नहीं। हम ही गड़बड़ करते हैं, करवट बदलेंगे, छोड़ो, करते हैं या नहीं। कितना प्यार है उसका, वो खुद देने आया है, वो ये भी सोच सकता है इन्हें लेना हो लो नहीं तो छोड़, मेरा क्या जाता है। लेकिन वो चाहता है मेरा हर बच्चा बहुत सुखी हो जाए, भरपूर करके जाऊं इन्हें, चारों युगों में इन्हें कोई कष्ट न हो, इनके पास सद्बुद्धि रहे, ये शक्तिशाली रहें, इनका मन शांत रहे, जब पाप की दुनिया शुरू हो जाए तो भी ये अति पाप आत्मा न बने। इसलिए बाबा के जो अच्छी आत्माएं हैं वो अति पापी नहीं बने, वो अच्छे रहे बहुत। जो आजकल के बहुत क्रिमिनल लोग हैं वैसे बाबा के वो देवकुल की आत्माएं नहीं बनती। तो विचार कर लें बाबा। हाँ ये तो बाबा अभी भी कहा, मन ही नहीं लगता, और ये सत्य है। हम सुन के ऐसा सोचते हैं कि बाबा ऐसे ही बहला रहा है हमें, पर सोचो माँ घर में अकेली रह जाए, चारों बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल चले गए हों, कैसी बेबसी से इंतजार करती है चार बज गए शाम के, आए नहीं, दस बार बाहर निकल के देखेगी आए नहीं। ये सत्य है कि बाबा को भी अपने बच्चों के साथ रहना ही अच्छा लगता है, और हम में से बहुत आत्माएं अगर योगयुक्त रहती हैं तो हम सब उसके सामने होते हैं ऊपर, तब वो अकेला नहीं होता, हम सब उसके सामने रहते हैं। तो सभी इन चीजों का फायदा उठाएं। बाबा तैयार सब कुछ देने के लिए, और लेने वाले सोच ले, अब लेने वाले कहीं ठंडे तो नहीं हो गए हैं। लेते चलें, ये मैं रिपीट कर रहा हूं जरा बार बार, ताकि सभी रियलाइज करें वो हमसे कितना ज्यादा प्यार करता है, वो हमें कैसा देखना चाहता है, वो हमारे लिए क्या क्या करता होगा ऊपर बैठ के। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, हर तरह से अच्छा रखने के लिए कितना सब कुछ करते रहते हैं, बच्चों को पता नहीं चलता। बच्चे तो बड़े होके क्या कह देते हैं, तुमने क्या किया मेरे लिए, माँ बेचारी गोद में खिलाते खिलाते थक गई, दूध पिलाया, साथ सुलाया, सफाई की, और बच्चे कह देते हैं क्या किया तुमने मेरे लिए। ऐसे ही हम भी कम समझते हैं बाबा हमारे लिए क्या क्या करता है। रियलाइज करें उसके प्यार को, उसने याद दिला दिया, स्मृति दिलाई, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम केवल याद किया करो कि बाबा मेरे साथ है। मैंने कुछ माताएं देखी, एक माता मुझे मिले, बुजुर्ग थी, योग तो उसका ज्यादा नहीं लगता होगा, पर वो इतनी मस्त रहती थी, चेहरे पे उसके रौनक थी, बाबा मेरे साथ है। उसके मुख पर भी यही था। उसके बच्चे आदि सब जो ज्ञान में नहीं थे उसकी इस बात से बहुत खुश थे और कह रहे थे कि बिल्कुल सच बात है, बाबा इसके साथ है भाई। बाबा को जानते तो थे ही, परिवार है। कहा बाबा इसके साथ है, इसे कोई कष्ट नहीं होता, और अगर होता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बल्कि उन्होंने कहा हमें भी कुछ कष्ट होता है तो ये बार बार हमें भी कहती है बाबा साथ है उसे याद करो और हमारे भी ठीक हो जाते हैं। भावना बैठा दी है बच्चों में। तो हम सब याद करें बाबा ने हमें क्या कहा। तुम कौन हो बोलो। अरे नहीं आत्मा कहा। तुम महान आत्मा हो, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। कितनी बार विजय पाई है तुमने? अनंत बार। तुम विजयी बनने वाले हो, तुम्हारी जीत होगी, याद दिला दिया। तुम घबरा रहे हो, इस माया को तुमने हजारों बार हराया है, इसमें कोई दम नहीं है। ये तो पेपर का शेर है, कागज का शेर है। तुम शक्तिशाली हो। देखो हमारी शक्तियों की बार बार हमें याद दिलाते हैं। तुम बहुत शक्तिशाली हो, मास्टर सर्व शक्तिवान हो। याद आया या ज्ञान हुआ? केवल याद आए, केवल ज्ञान नहीं। नशा हो जाए, ईश्वरीय शक्तियां मेरे साथ काम कर रही हैं। देखो एक ही समय आया है जब ईश्वरीय शक्तियां हमारे साथ काम करती हैं। महाभारत में दिखाया, जो लोग विश्वास करते थे कि जिधर श्री कृष्ण है उधर ही विजय होगी, बहुत लोग महसूस करते थे कि वासुदेव के पास कुछ विशेष शक्तियां हैं। सब लोग ये नहीं कहते थे भगवान है, पर इसके पास कुछ है जरूर। तो लोग कहते थे पांडवों के साथ तो श्री कृष्ण है, उनकी विजय होगी। हमारे साथ तो बाबा की शक्तियां काम कर रही हैं, विजय हमारी ही होगी। बाबा ने ये हमें याद दिलाया, बहुत बड़ी चीज है। याद दिलाया तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, तुम ही वे हो। बहुत बड़ी चीज। शास्त्रों में भी ऐसी कुछ बातें थी लेकिन कंफ्यूजन वाली थी। तत्त्वम, तुम वही हो, तुम वही हो, लेकिन लोगों ने गड़बड़ कर दी। वही कौन हो? वही कौन हो? आत्मा सो परमात्मा, तुम ही वो हो, तुम ही वो हो। मैंने एक सन्यासी से पूछा, जब हम छोटे थे ना सन्यासियों को बहुत छेड़ते थे, आबू में भी सन्यासी थे बेचारे, ब्रह्मा कुमारियों से परेशान हो के भाग ही गए यहाँ से, अब कोई बच्चे नहीं है, नहीं तो बहुत सन्यासी रहते थे। तो मैंने पूछा तुम ही वो हो? कहा मैं ही वो हूँ, बड़े नशे में था वो। मैंने कहा इसको जरा सीधा कर दो, वो ही तुम हो? अब वो सोचने लगा ये बात तो थोड़ी गड़बड़ वाली हो गई। मैंने कहा फिर भूल कैसे गए? भगवान को भूलता है क्या कि मैं भगवान हूं? क्यों तुम भूले? उसने कहा कि अज्ञान हो गया, पहले बता चुका था, अज्ञान हो गया ब्रह्म को, अज्ञान हो गया तो भूल गया सब कुछ। मैंने कहा ब्रह्म को अज्ञान होता है, फिर वो ब्रह्म कैसा? तुम तो उसे त्रिकालदर्शी कहते हो, सर्वज्ञ, अज्ञान कहां से उसको हुआ? तो ज्ञान का सागर है। तो बेचारे गुस्सा कर लेते थे फिर हमसे, अरे लड़के कुतर्क करते हैं, उल्टी सुलटी बात करते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियों ने क्या सिखा दिया है। संतु बाबा ने हमें याद दिलाया तुम वही हो। कौन? जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, तुम वही हो जिनके दर्शनों के लिए भक्त घंटों कतार लगाकर खड़े रहते हैं, तुम वही हो जिनको बड़े बड़े लोग सम्मान देने के लिए दरवाजा खुलने की इंतजार करते हैं। बाबा कहा करते थे अव्यक्त में, तुम्हारे मंदिरों में भी कितना चढ़ावा चढ़ता है, जिस दिन तुम प्रख्यात हो जाओगे क्या होगा, संसार की सारी धन संपदा तुम्हारे चरणों में आ जाएगी। बहुत महान हम सब, याद करो, जो बाबा ने हमें याद दिलाया वो हमें याद आया, याद करो। बहुत सुंदर बात, तुम पूर्वज हो, तुम विश्व कल्याणकारी हो। दो गहरी बातें बाबा की, सभी ध्यान से सुन लेंगे और इस पे कार्य करेंगे। यदि तुम्हारे अंदर विश्व कल्याण की भावना रहे तो तुम्हारे द्वारा ऑटोमेटिकली विश्व का कल्याण होता रहेगा। इसलिए अपने अंदर ये फीलिंग बहुत बढ़ानी है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मेरा जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। तो वाइब्रेशंस फैलते जाएंगे, सब आत्माओं के लिए स्नेह और शुभ भावनाएं बढ़ती जाएंगी। समझ रही है माताएं, क्या अभ्यास करेंगे, मैं कौन हूँ, विश्व कल्याणकारी। केवल अपनी परिवार की कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी। दूसरा, तुम पूर्वज हो, अगर तुम इस स्वमान में स्थित रहो तो तुम्हारे द्वारा सबकी पालना होती रहेगी। ये दोनों ही बातें बहुत गुह्य हैं, बहुत पहले से बाबा ने कही थी, मैंने ये बात बहुत साल पहले सुनी थी, पहली विश्व कल्याणकारी। मुझे याद है बाबा अपने कमरे में आए थे, कमरे में बाबा बहुत आते थे और हम सब मधुबन निवासी बैठते थे, थोड़े से तो थे 25-30, तो एक दादा थे विश्व की आनंद किशोर दादा, उन्होंने बाबा से कहा, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी थे और सर्विस की उनमें उमंग बहुत थी, तो कहा बाबा मुझे बाहर जाने की बहुत इच्छा होती है, सेवा पर निमंत्रण भी मिलते थे, लेकिन सारा कार्य उनके जिब में था। यहाँ दादी जब चीफ बनी तो आनंद किशोर दादा मैनेजर थे, सारा गवर्नमेंट की लिखा पढ़ी सब जो ऑफिशियल काम थे वो करते थे। तो बाबा ने तब उनको कहा था ये बात, मन में विश्व कल्याण की भावना रखने से वही पुण्य जमा होता रहेगा जो प्रैक्टिकल में तुम जाकर विश्व कल्याण करो। तो बड़ी सूक्ष्म गति है ये, और ये पूर्वज की बात भी कुछ समय बाद आई थी कि पूर्वज का नशा रहे तो चलते फिरते भी तुमसे पालना होती रहेगी, वो फीलिंग हो जाएगी। जैसे घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति हो और उसको ये पता है मैं बुजुर्ग हूँ, सब बच्चे हैं, तो प्यार देगा ना सबको, चलते फिरते काम करते। तो आज इस पे चिंतन करेंगे सभी बहुत अच्छा, और सभी लक्ष्य बना ले, आधा घंटा योग करके सोना है, बाबा ने भी कहा है, तो सवेरे योग बहुत अच्छा लगेगा। ओम शांति।